اور قرآن پاک میں ایسی بہت مثالیں ہیں. تیسرے پارے میں ایک مثال ہے کہ ایک شخص تھا جس کا باغ بہت خوبصورت تھا, خوب بلندی پہ تھا, بارش بھی ہوتی تھی, کھلتا تھا, لیکن ایک دم آگ کا بگولا آیا اور آگ باغ کو کھا گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ تمہیں پتہ کہ یہ کس کا باغ ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہمیں تو نہیں سمجھ آئی. فرمایا یہ وہ شخص ہے جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا اور آخری وقت میں برے کام پہ گیا اور اسی پہ موت آ گئی, لگی لگائی کھیتی ضائع ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے, حتیٰ کہ اس کا اگلا قدم جو ہے وہ جنت میں ہو, لیکن اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اسی پہ اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے. تو لہٰذا انسان ہر لمحے اس کے لیے تیار رہے کہ میرا خاتمہ کیا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الاعمال بالخواتیم, اعمال خاتموں کے ساتھ ہے, یعنی جو اینڈ اچھا تو وہ اچھا. میں اس کو بہت سمپل سے لفظوں میں سمجھتی ہوں, خود آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. دیکھیے کہ آپ چار سسٹرز کھانا بنا کے لاتی ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے کہ نہاری بنا کر لائیں. مثال دیتی ہوں, اب آپ دیکھیے کہ ایک آتے ہی شور مچاتی ہے, اتنی محنت کی میں نے, مسالہ گھونا, یہ کیا وہ کیا, شور مچاتی ہیں خوب, بڑی محنت کی. دوسری آتی ہے وہ کہتی ہے کہ بنائی تو ہے پتہ نہیں کیسی بنی ہے. تیسری کسر نفسی کے ساتھ آ کے کیا کہتی ہے, میرے سے تو کبھی اچھی نہیں بنی, آج کیسے اچھی بنیں گی. ہر ایک کا اپنی محنت کا گنگانا الگ ہے. اب پتہ کیسے چلے گا جب چاروں ڈون دے ٹیبل پہ ہوں گے اور آپ چاروں میں سے ایک ایک چمچ چکھ لیں, آپ کو کیا لگے کہ کوئی سارا دن ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا اور کوئی کہے کہ میں نے تو فٹافٹ گوشت بھونا, اس میں ڈال اور چڑھا دی, مجھے تو محنت نہیں کرنی پڑی. ہو سکتا ہے جس نے کچھ نہیں کیا اس کی زیادہ مزے کی ہو. اور میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں کہ نہاری اسی کی مزے کی ہوتی ہے جو بس چڑھا کے اس کی جان چھوڑ دے. ہم جب بھون بھون کے اس کے گوشت کی لیس ختم کر دیتے ہیں نا, تو اس میں وہ لیس نہیں بنتی. تو آپ کو کیا لگے ٹیسٹ کس کا اچھا؟ آپ فوراً, کچھ لوگ آدھے گھنٹے میں کھانا بنا لیتے ہیں, کچھ سارا دن لگے رہتے ہیں, بھائی اینڈ دیکھ لیجئے کس کا مزے کا ہے. تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کے اللہ تمہارا اینڈ دیکھے گا. مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے اندر سے کچھ ہو رہا ہے. اور آپ کو ایک سچ بات بتاؤں, انسان ساری زندگی چھپا رہتا ہے, موت کے وقت اس کی اصل کھل جاتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کا نفاق مجبوریوں کے پردے میں چھپا ہی رہتا ہے ساری زندگی. وہ خود کو بھی مجبور سمجھتے ہیں, ان کے ساتھی بھی خود کو مجبور سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں اندر سے وہ منافق ہوتے ہیں. آج ان کی مجبوریاں ختم ہونا تو وہ کام پھر بھی کوئی نہیں کریں گے کیونکہ اندر نفاق تھا. تو دعا کیجئے اللہ ہمارے اندر کے کھوٹ کھپٹ دور کر دیں. پھر اسی طرح سورت نحل کی آیت 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین توفاہم, وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں, الملائکۃ فرشتے, کس کیفیت میں؟ طیبین, پاکیزگی کی حالت میں. یعنی کچھ لوگ ہیں جن کی موت بڑی پاکیزگی کی حالت میں آتی ہیں. ان کی موت کے وقت فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم, وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پہ, السلام علیکم, جیسے ہم کہتے ہیں نا. کیا ساتھی خوشخبری دیتے ہیں؟ ادخل الجنہ, داخل ہو جاؤ جنت میں. کیوں؟ بما کنتم تعملون, اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے. یہ کون سا خاتمہ ہے؟ خاتمہ بالخیر ہے. کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو موت کے وقت پہ یہ آواز لگ جائے. سورت فجر کی آخری آیتوں میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی, چل داخل ہو جا اس کے بندوں میں اور چل داخل ہو جا اس کی جنت میں. تو خاتمہ بالخیر بہت ہے. آج کل خبر گرم ہے کہ حرم میں ایک حادثہ ہو گیا, اور شاید ہسٹری کا سب سے بڑا حادثہ ہے کہ 107 لوگ کنفرمڈ ہیں کہ جو وہاں سے دنیا سے چلے گئے اور زخمی بھی ہوں گے. اور مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے تھوڑے, جو حال آپ دیکھتے ہیں وہاں کا, کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ اور بہترین عمل کرتے ہوئے اور بہترین کپڑوں میں ان کو موت آئی. اس سے خوبصورت موت کیا ہوگی؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کون تھے, ان کی کمائی کیا تھی, ان کے رزق حلال تھا کہ حرام, ہمیں اس سے کیا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اللہ نے ان کا خاتمہ بڑا اچھا کیا. اور ہمارا اس حدیث کے مطابق جو صبح بھی شیئر کی تھی کہ وہ قیامت تک اب ہر سال حج کریں گے. जो हज करते हुए मरा उसका हज होगा, जो उमरा की नियत से गया उसका उमरा होगा, जो जिहाद फी सबीलिल्लाह में गया और मरा गया तो वो क्यामत तक जिहाद करता रहेगा। और हदीस में आता है कि जो किसी इमारत के नीचे गिर के मरा वो शहीद है। अब मुझे आपको उनके साथ फतवे नहीं लगाने कि ये शहीद थे कि नहीं थे, कौन थे अल्लाह जाने वो जाने, लेकिन हमें अपनी फिक्र है कि हमारी मौत किस हाल में आएगी। एक इंसान सारी जिंदगी जो काम करता है ना, ये उसकी असल में छुपी हुई नेकियाँ होती हैं, मौत के वक्त में वो छुप नहीं सकती। और ये जो मौत के वक्त में कलमा आता है ना जुबान पे, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इमाम इब्ने कय्यम या इब्ने तैमिया दोनों में से किसी का कौल है कि बंदा मोमिन के दिल में कलमा होता है, सारी जिंदगी उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से चूर होता है। मौत के फरिश्ते को देख कर खौफ की वजह से वो कलमा जुबान पे आ जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर आप में से किसी ने कोई वीडियो देखी है तो उसमें जब वो हादसा हो रहा था तो उस वक्त लोग यही पढ़ रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो जो शोर उठा था और उससे पहले जो एक हरिकेन टाइप की कैफियत थी तो उसमें भी लोग गाड़ियां चलाते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक अजीब सी हैबत थी। मोहम्मद शरीफ साहब का नाम सुना होगा आपने, जो अल मगरिब के इंस्टीट्यूट के मतलब फाउंडर भी हैं, तो मैं उनका भी पढ़ रही थी तो वो खुद भी वहीं थे और वो कह रहे हैं कि मैं उसी दिन सुबह पहुंचा और जुमे का दिन था तो मैंने, मुझे था कि जुमे से पहले मैं तवाफ़ नहीं कर सकूंगा उमरा, तो चलो जुमे के बाद करता हूँ। और जुमे के बाद करने की मौका कब मिला, असर के बाद, और अभी सातवें चक्कर में था मैं। और वो कहते हैं कि एकदम बस ऐसे लगा कि मुकाम इब्राहिम की तरफ से कुछ गिरा और ऊपर से इतना खौफनाक जन्नाटेदार आवाजें, एक आसमान पे बिजली कड़क रही है, नीचे ये शोर है। कहते मैंने जिंदगी में कभी ऐसा तवाफ नहीं किया और उसके बाद एकदम शोर मच गया। तो मौत हमारे कितने करीब है, हदीस में आता है कि मौत तुम्हारे जूती के तस्मे के भी करीब है। और आप देखिए कि खड़ा शख्स जब गिरता है ना तो वो अपने जूते पे गिरता है। मैं और आप किस चीज का मान करते हैं, मेरे और आपके हाथ में है क्या? तो लिहाजा देर ना कीजिए, अल्लाह के नबी ने भारी दो, जल्दी करो, दौड़ लगाओ, मत अपनी नेकियों को पोस्टपोन करो। सूरत मुनाफिकून में क्या आता है, वो शख्स जो सारी जिंदगी नेकियों को डिले करता है मौत के फरिश्ते को देखकर क्या कहता है, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, क्यों नहीं तूने मोहलत दी हमको थोड़ी सी, क्यों, फसद्दका वाकुम मिनस सालिहीन, नेकियां करता और बहुत सारा माल तिजोरी में रखा है, जरा उसको जमा, उसको खर्च करके आ जाऊं। तो लिहाजा हर दिन जब घर से निकलें ये सोच के निकलें कि मैंने वापस नहीं आना, जा तो अपने कदमों पर रही हो, हो सकता है चार लोगों के कंधों पर सवार करके वापस आऊं, क्या मुमकिन है कि नहीं? कोई इंश्योरेंस है हमारे पास ऐसी कि जो हमारी मौत को टाल दे? इंश्योरेंस छोड़ दीजिए, जो दुनिया में जिस फरिश्ते ने जान लेनी है सबकी, उसकी भी जान निकलनी है, तो लिहाजा इसकी फिक्र करनी है। चंद रिवायात आपके साथ शेयर करूंगी कि अहदीस में क्या हुस्न खात्मा के बारे में आता है। इब्ने हब्बान की एक रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया, हजरत अनस इसके रावी हैं, कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए खैर चाहता है तो इसे काम लेता है। पूछा वो किस तरह काम लेता है, फरमाया मौत से पहले उसे नेक काम की तौफीक दे देता है। कभी ऐसा होता है, मुझे ये बात कहते हुए अपने इम्तिहान देने के दिन याद आ गए, जब पढ़ के जाते थे ना, कभी बिल्कुल थोड़ा पढ़ा होता था, फिक्र ही लगी होती थी कि पांच तो सवाल पूरे पढ़े भी नहीं हुए तो आज गया तो क्या बनेगा, लेकिन पेपर में बिल्कुल वही पांच आ जाते थे जिनको नजर डाली होती थी। और कभी पूरी पूरी किताबें पढ़ी होती हैं और सोचा होता ये नहीं आना, ये इसकी कोई उम्मीद नहीं, ये तो पिछले साल आ गया था और वही आ जाता। तो ये अल्लाह के फैसले हैं ना। तो आपने अपनी जिंदगी में कुछ लोगों की कैफियत देखी होगी बदलते हुए, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो प्रोफेशन ही है, दिन रात हम उन्हीं लोगों से मिलते जुलते रहते हैं अल्लाह के हुक्म से, कि जिनकी जिंदगियों में कुरान का जब नूर आता है, मुझे ऐसा लगता है कि दिलों की बंजर ज़मीनों में ईमान के बीज लगाता है। इस साल भी इतनी बड़ी खुशखबरी मिली मुझे, इतनी अच्छी मेरी दोस्त साथी कह लीजिए, तो अल्लाह ने उसको दोबारा फिर कुरान से जोड़ा, और जो अब उनकी मैं दिन रात चीज़ें देखती हूँ और वो खुद शेयर करती हैं, पुरानी साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस साल चूँकि अमेरिका में जाकर इत्तेफाक हुआ तो वहाँ बहुत सारे पहले साथी भी मिले, तो वो पहले शुरू में आती थी क्लासेस में, जब पहले भी क्लासों में आई तो धूम मच गई थी कि फलां क्लासेस में आने लग गई हैं, बहुत प्यारी सिस्टर है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं लोग उनके बारे में सोच ही लेते हैं कि इनको कहाँ ये दीन मिलना है, इनको हिदायत कहाँ मिलनी है। लेकिन किस्सा मुख्तसर कि अल्लाह ने उनको इस साल का दौरे कुरान सुनवाया, तो फिर वो उसके बाद जो मेरे ईद के दर्स थे उसमें आई तो फूट फूट के रोई कि जो मुझे इस साल कुरान ने दिया। कि ईद के दिन ही कहती हैं अपने घर में ढोलक पार्टी रखी हुई थी किसी की, और उस दिन उनका ज़मीर उनको झंझोड़ रहा था कि ये क्या कर रही हो। खैर अल्लाह ने फैसला कराया कि आज के बाद ख़त्म। कहती स्पॉन्टेनियसली मैंने फैसला किया कि मैंने आज से हिजाब करना है, और घर वालों के लिए वो एक पहाड़ गिरने वाली बात थी, तुम अपने बाल छुपाओगी लोग तो तुमसे बाल बनवाते हैं। किस्सा मुख्तसर, ये बातें मैं मोहब्बत से सुना रही हूँ। जब अल्लाह किसी की खैर चाहता है ना तो उसका दिल बदलता है। और अब से लेके कितनी देर गुजरी है, अभी तो 2 माह भी नहीं पूरे, चले 2 माह होने को आ गए, मिसाल है रमजान गुजरे माशाल्लाह, उसने उसके बाद अभी नया कोर्स शुरू हुआ है जो सबीलुल जन्ना ऑनलाइन पे 3 दिन का वो ज्वाइन किया। सहरी का वक्त होता है अमेरिका में उस वक्त, तो मैं उससे जब पूछूं सुनाए कैसी, कहती मैं अपने कोर्स को इंजॉय कर रही हूँ, 50+ सिस्टर्स को मैं आगे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से जोड़ चुकी हूँ और इतने कुरान और ये सेट लेके दे चुकी हूँ। चौथे पांचवें दिन ही मेरे पास आ गई, कहने लगी मुझे कोई बड़ा काम करना है, मुझे आदत ही नहीं है छोटे काम करने की, क्योंकि उन्होंने दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े काम किए। कहती मुझे बताएं मैं क्या करूँ, ये मुझे छोटी छोटी नेकियां नहीं करनी, मुझसे कोई बड़ी नेकी कराए। अल्लाह दिल बदलता है, किसके हाथ में दिल, अल्लाह के हाथ में, तो अपने लिए भी। और इस वक्त खास तौर पर नियत करें, किसी का सोचे, किसी का बेटा, किसी का भाई, को बाप, शौहर, बेटी, बहन, जिसकी हिदायत के लिए आप बड़े हरीस हैं ना, तो दुआ करें कि अल्लाह उनका दिल बदल दे। हम पहले अपने लिए कर लें कि अल्लाह मेरा दिल बदल दे। कोई एक लम्हा होता है जिस वक्त इंसान को नेकी की तौफीक मिलती है, तो अल्लाह से ये दुआ किया करे कि अल्लाह मरने से पहले मुझे गुनाह की तौफीक न देना, क्योंकि हदीस में आता है कि जैसा तुम जियोगे वैसा मरोगे, और जिस हाल पे तुम्हें मौत आएगी उसी पे तुम उठाए जाओगे, और जिस हाल पे तुम उठाए जाओगे उसी के मुताबिक तुम्हारा हशर नशर होगा। फिर इसी तरह एक और रिवायत सही बुखारी की है, बहुत ही खूबसूरत रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया, फरमाया वो सदका जो तंदरुस्ती की हालत में हो जबकि तुझ पर माल की हिरस गालिब है, ख्वाहिशें बहुत होती हैं ना जिंदगी में, और नादारी का भी अंदेशा हो और दौलतमंदी की ख्वाहिश भी हो, वो सदका अल्लाह को पसंद होता है ना। फरमाया बस उस वक्त का इंतजार ना करो जब दम हलक में फंस जाए, और उस वक्त तुम कहो फलां को इतना दे दो, फलां को इतना दे दो, हालांकि वो तो अब फलां और फलां का हो ही चुका। इधर आप दम तोड़िए, उधर आपका माल विरसा बन जाएगा और तरका समझकर बांट दिया जाएगा। तो एक इंसान मौत के वक्त पे ना चाहते हुए भी सदके की ख्वाहिश करता है। बल्कि मैंने बहुत सारी बड़ी खवातीन को भी देखा है कि जो ही उनको कोई गम की खबर पहुंचती है ना, कोई भी बीमारी, परेशानी, दुख की, तो फौरन कहती है मेरा बरस लाना, मैं सदका दे दूं। ये इंसान के साथ गुथा हुआ है। तो हर लम्हे ये सोचिए कि किसी भी वक्त अगर मेरी मौत आ गई तो क्या होगा। तो सदका खैरात देना ये इंसान की बुरी मौत को भी टालता है, ये भी नोट कर लें। किसी बंदे की बुरी मौत लिखी होती है, अल्लाह ना करे हम में से किसी की हो, लेकिन किसी वक्त का कोई सदका कबूल आ जाता है, हो जाता है, और अल्लाह उसकी बुरी मौत को अच्छी मौत में ढाल देते हैं। इसी तरह सही बुखारी की एक रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से, फरमाया अल्लाह ताला उस इंसान के उजर को नहीं सुनेगा जिसकी मौत में ताखीर हो और वो 60 साल की उम्र का होकर मरे। इसको भी जरा सोचिएगा, यानी 60 साल की उम्र हो और बंदा अल्लाह की बात ना समझे, अल्लाह का कुरान ना पढ़े, अल्लाह की पसंद का ना बने, और वहां जाए और पूछे सुनाओ भाई किताब पढ़ी थी, अल्लाह ताला वक्त ही नहीं मिला। क्यों भाई, क्या किया, पहले बच्ची थी, फिर ये हुआ, फिर बड़ी हुई, फिर पढ़ने लग गए, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों के बच्चे, अच्छा ये बताओ कितने साल का होके मरी हो, बस ये 60 से कुछ ऊपर, फरिश्तों ले जाओ इसको, इसका उजर कबूल नहीं। जैसे जज साहब फैसला दे देते ना कि नहीं इसके हालात के मुताबिक ये बात दुरुस्त नहीं है, क्या तुम्हें 60 साल में इतना भी वक्त न मिला कि तुम मेरी किताब सुनते और समझते। आज मेरे समेत हम में से हर एक खुद से ये सवाल करे, इन 60 सालों में मैंने अल्लाह की इस किताब को समझ लिया। फर फर करती इंग्लिश हम बोलते हैं, किसी ने एक कोटेशन भेजी थी कि इंग्लिश तो इतनी पढ़ ली कि अंग्रेजों को पढ़ाने लग गए, अरबी इतनी भी ना समझे कि खुद समझ सके। आज हमारा तो ये हाल है। एक किसी ने वीडियो भेजी तो एक इंग्लिश शख्स है, यानी नॉन मुस्लिम है, वो खुद बता रहा है, और उसका मैसेज है मुस्लिम्स के नाम। कहता है मैंने लैंग्वेज सीखने के लिए पिछले 2 साल में हफ्ते में 4 या 5 दिन डेली कितने घंटे अरबी ग्रामर पढ़ी है, और मैं ओ मुस्लिम्स तुम्हें बोल बोल के कहता हूँ, यू शुड लर्न योर लैंग्वेज, दिस इज सो ब्यूटीफुल लैंग्वेज. वो इसकी तारीफें कर रहा है, इवन कहता है, इवन ऑल्दो आई एम नॉट मुस्लिम येट, लेकिन यकीन करे जो उसकी बातें थी, मेरा दिल गवाही दे रहा था कि अल्लाह इसको जरूर ईमान तक लेके आएगा. फिर औसबिल्ला सुनाता है, फिर बिस्मिल्ला, फिर सूरह फातिहा पढ़ता है, जैसे भी वो पढ़ता है, और वो कहता है कि सो ब्यूटीफुल लैंग्वेज ओ मुस्लिम्स तुम्हारी. तो शर्म ये आ रही थी उसकी बात सुनते हुए कि अल्लाह एक गैर मुस्लिम से कहलवा रहा है हमें कि तुम इस कुरान को पढ़ो. तो याद रखिए, इस दुनिया के जायके तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, मौत का जायका चखना है, उसको याद करेंगे ना तो दुनिया में से वक्त बहुत निकलेगा. हदीस में आते तिरमिजी की रिवायत है, आपने फरमाया अबू सईद अल खुदरी से फरमाया, अक्सिरु हाजिमुल लज्जात यानी अल मौत, कसरत से याद करो तुम लज्जतों को तोड़ने वाली चीज को यानी मौत को. तो मौत को याद करने से दिल से ख्वाहिशात कम हो जाती हैं. अब सवाल पैदा होता है कि हम तो ये चाहते हैं, देखिए ना, अब जो लोग दुनिया से गए, कुछ लोग रो रहे होंगे, कुछ उनके बारे में कमेंट्स दे रहे होंगे, कोई कहेगा आजमाइश है, कोई कहेगा अल्लाह का कहर टूटा, कोई कुछ कोई कुछ. भाई मुझे और आपको क्या लगे, मुझे तो ये देखना है कि मेरा दिन ब दिन जिंदगी का मामला क्या है. देखिए, हम में से हर एक अपनी उम्र सोचे, कमोबेश सबको पता ही होती है अपनी उम्र. 65 को बांटिए जहन में, चलिए 65 को ऊपर कर लेते हैं, 75 ईयर्स. हम में से जितनी सिस्टर्स 25 ईयर्स तक की हैं या उसके अंडर हैं, तो 1/3 ऑफ लाइफ वो गुजार चुकी. जो 50 तक पहुंच गए उसके अराउंड, तो 2/3 ऑफ लाइफ हैड गॉन, तो पीछे क्या रह गया. और जो 50 से ऊपर हैं तो उनकी ज़िंदगी का तो आखिरी धक्का शुरू हो गया. इसमें भी एक छोटी सी बात, आजकल में लेक्चर हुआ है कि जिंदगी की कहानी 3 लफ्ज़ों की, उसमें ये मिसाल 75 की दी थी. अब ज़रूरत नहीं बार बार कहूँ, दिल चाहता है कि आपसे हर बात शेयर करूँ, लेकिन फिर बात बहुत लंबी हो गई. लेकिन हकीकत है कि हमारी ज़िंदगी के भी ये 3 मरहले हैं. बचपन से 25 साल की उम्र खेल, कैरियर, भागो दौड़ो, डॉक्टर बनो, ये करो ये वो, बन गए जी. 25 से 50 तक घर, बच्चे, शादी, घर सजाओ, कुर्सी कैसी, मेज़ कैसी, डोंगा कैसा, डिश कैसी, बिल कहाँ जमा होगा. 50 साल हो जाते हैं और आखिरी 25 साल दर्द और दुख तकलीफों में गुजर जाते हैं. अल्लाह के नबी ने कहा कि उस अर्जल उम्र से पनाह मांगो कि जो तुम्हें बेबस कर दे, और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे सीने में हिदायत का नूर डाल दे. जब दिल में हिदायत का नूर आता है ना, तो उसकी कुछ अलामतें होती हैं. रिवायत है मिश्कात की, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी सल्लम ने फरमाया, जब नूर सीने में दाखिल होता है तो सीना खुल जाता है. वो है ना कुरान में, अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम, या हजरत मूसा की दुआ तो सभी को याद होगी ना कि रब्बिशरहली सदरी व यस्सरली अमरी. तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सीने का खुलना क्या है, कि नूर अंदर आता है तो सीना खुलता है. तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, इसकी कोई अलामतें भी हैं, कैसे पता चलता है कि मेरे सीने में नूर आ गया. तो आपने फरमाया कि हाँ, इसकी अलामतों में एक अलामत यह है कि बंदे का दिल इस दुनिया से उचाट हो जाता है और वो हमेशगी के घर का मुश्ताक हो जाता है. उसके सारे ड्रीम्स आखिरत के घर के लिए होते हैं, वहाँ पर्दे कैसे लगेंगे, वहाँ कुर्सियाँ कैसी होंगी. और सोचा करें, अपने बच्चों शौहरों के साथ बैठ के ड्रीमिंग करें, मेरा जन्नत का महल कैसा होगा, वहाँ मैं किस रंग का बेडरूम लूँगी. जितना मर्जी सोचे, सब शौक वहाँ पे डाल के तो देखिए, जब आपको वहाँ का शौक लगता है ना, तो यहाँ की तो दुनिया बस मिट्टी और चूना है. ठीक है, इंसान साफ सुथरा घर बनाए, अच्छा बनाए, लेकिन मकसद हयात तो नहीं है, नमाजें तो नहीं उसके लिए जाने की. तो ये मेरे और आपके लिए क्राइटेरियन है, सीना खुला हुआ है तो इस दुनिया से दिलो चाट, जहाँ ज़रूरत है गुजारा कर लो, लेकिन असल शौक वहाँ पूरे करेंगे. और आपने फरमाया कि मौत के आने से पहले वो मौत की तैयारी में लग जाता है. सच बताइए कि आज के दौर में अगर किसी के बारे में ऐसा हो तो लोग पता क्या कहेंगे, हाय बेचारी, इसको तो डिप्रेशन ही हो गया, ना हंसती है, ना बोलती है, ना खेलती है, ना कूदती है. इस्लाम ये भी नहीं कहता कि रोए रहें, मुर्दा मुर्दा बैठे रहें और आपको देख के कोई खुश ना हो, आप किसी को देखकर खुश ना हो, अच्छे कपड़े ना पहने, अच्छे घर ना बनाए, ये नहीं इस्लाम कहता. लेकिन मकसद नहीं बनाना, वो इसी शब और रोज, वो कहते ना, इसी रोज और शब में खो के ना रह जा, कि तेरे जमानो मकां और भी हैं. तो हमारे घर तो बुजर की तरह और भी बनने वाले हैं ना। किसी ने बुजर से पूछा कि बुजर आपके घर में सामान क्यों नहीं है, कहा अगले घर में दूसरे घर में भेजा हुआ, समझे इनके दो घर होंगे। कहा भाई थोड़ा सा इधर भी तो रख लेते। कहा क्या करूं, इस घर का मालिक इधर रहने ही नहीं देता। कहाँ है बुजर का दूसरा घर, उनकी बीवी ने कहा हर चीज आगे भेज देते हैं कि वहां वहां बुक करा। और आप देखिए जहां इंसान का सामान होता है ना उसी को घर कहते हैं। ये मेरे से ज्यादा आप लोग नहीं समझ सकते, माशाल्लाह आप तो सारी जिंदगी एक ही घर में बैठे होंगे ना। हमारा घर तो अक्सर हमारे साथ ही होता है। कोई पूछता आपका घर किधर है तो मैं सोचती हूँ हमारा सामान किधर है, वहीं घर होगा। जहां सामान होते वहीं पलट के जाता है इंसान, समझ ही नहीं आती हमारा घर किधर है। हमारा घर हर शहर में और हर मुल्क में अल्लाह के हुक्म से। आपके एक ही घर में सारी जिंदगी गुजार दी बोरिंग, कितना मजा आता है नए नए घरों में रहने का, नई नई जगहों पर रहने का। रियली मैंने ये बात मुबालगे से नहीं कही, देखने में तकलीफ तो होती है इसमें तो कोई शक नहीं। वो भी तो एक ड्रीम है कि आपकी चीजें आपके अलमारी में पड़ी रहे और कभी ना हिले, तभी तो भर जाती हैं कि वो उलटनी पड़ती हैं, लेकिन हम और लाला के रखते हैं। तो जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो वो दो सूटकेस भी दिल करता है इनको पकड़ के दरिया में फेंक दें। सच्ची जो बात है, तो अगर आपकी जिंदगी दो सूटकेसों में आ जाए ना तो आप समझ लीजिए कि आपका सीना खुल गया। जो जरूरत की चीज है वो रख लो, जो नहीं है वो किसी और को दे दो। जब जिएंगे 6 माह बाद तो फिर मिल जाएगी, और हमेशा ही मिलती है, नहीं मिलती अच्छी ही मिलती है। तो लिहाजा शरह सदर बहुत जरूरी है, इसलिए कि हम खात्मा बिल खैर चाहते हैं तो उसके लिए हमें दुनिया में अपनी ख्वाहिशों पे काबू पाना पड़ेगा। तिर्मिजी की रिवायत है शद्दाद बिन औस से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दर हकीकत अकलमंद वो है। अपना नाम लिख लें पहले से, क्योंकि हम समझते हैं कि हम अकलमंद है, और हो सकता है जो बात अभी बढ़ने लगी है वो हमारे में हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है अकलमंद? जिसने अपने नफ्स को काबू में रखा। सोचे डू आई हैव सेल्फ कंट्रोल, कोई चीज देख के लटक तो नहीं मैं जाती, जान तो नहीं निकल जाती, हाय ये चीज ना हुई तो मैं तो मरी जाऊंगी, नहीं। सेल्फ कंट्रोल, और उम्र एक होती है टीन एज, स्वीट टेन, माओ से रोना ही हर वक्त लड़ाई जी होती है, मम्मी प्लीज वो जोड़ा प्लीज, बस ये ले लूं फिर नहीं, अब जोड़ा आ गया अब इसके साथ पहनूंगी क्या, फिर जूती फिर मैचिंग फिर ये वो, और एक दफा पहन के वो नीचे रुल रहा होता है, माँ कहती है इसको उठा के हैंगर में लगा के वापस तो लगा दो, शौक पूरा हो गया बस खत्म। और यकीन करें ये दुनिया यही है कि जो मिल जाए तो मट्टी, ना मिले तो सोना है। दुनिया वो है जिसको लोग कहते हैं, जो चीज़ आपकी अलमारी में आ गई वो हटिया हटिया हो गई, और जो नहीं मिलती उसको हम ख्वाबों में भी देखते हैं, ख्यालों में भी सोचते हैं। तो फरमाया कि अकलमंद वो है जिसने अपने नफ्स को काबू में रखा और मौत के बाद आने वाली जिंदगी को संवारने में लग गया। हर सवाल पे चेकलिस्ट बनाए, क्या मैं मौत के बाद आने वाली जिंदगी को संवारने में लगी हुई हूं? और बेवकूफ वो है जिसने अपने आप को नफ्स की नाजायज ख्वाहिशों के पीछे लगा दिया और अल्लाह पर गलत तवक्को बांधी। ये बड़ी धोखे की बात है, मर्जियां सारी अपनी करते हैं और उम्मीदें के देखना अल्लाह ने मुझे जन्नतुल फिरदौस भी दे ही देनी है जैसे उसने दुनिया दी है। अल्लाह दे दे कादिर है, लेकिन हमें डिजर्व तो करवाना पड़ेगा ना। तो जितना इस दुनिया में हम ख्वाहिश करेंगे ना कि अल्लाह तो हमारी इस दुनिया को भी अच्छा बना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह ताला दुनिया भी देता है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि मुसलमान दुनिया में रोते खोते चले जाएं, लेकिन तमन्ना नहीं बनानी। तिर्मिजी की रिवायत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह से हया करो। लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी अल्लाह से हया का क्या मतलब है? फरमाया अपने ख्यालात की निगरानी करो, यानी चेक योर या वॉच योर थॉट्स। गंदी बातें सोचना, गंदे ख्यालात में रहना, ये अल्लाह से बेहया होने की अलामत है। और फरमाया दूसरी पेट के अंदर जाने वाली गजा की देखभाल करो, यानी हलाल खा रहे हो कि हराम खा रहे हो, नाफरमानी है इसका हिसाब तो नहीं देना पड़ेगा। और तीसरी चीज आपने फरमाया कि मौत के नतीजे में गल सड़ जाने और फना हो जाने को याद रखो। जरा सोचिए तो सही, हमारा जिस्म बिलाखिर कहाँ जाएगा? मट्टी में जाएगा ना। और जो बात मारूफ है वो यही है कि मट्टी को कीड़े खा ही जाते हैं। जिस बदन को कीड़ों ने खाना है सारी जिंदगी उसके गम। देखिए मेडिकल किसका है? जिस्म का। कंफर्ट किसका है? जिस्म का। चेकअप्स जितने होते हैं वो किसके हैं? जिस्म के। गर्मी सर्दी का लिबास किसका है? जिस्म का। हेल्दी चीज़ें किसकी हैं, स्मूदीज किसके लिए पीते हैं, एक्सरसाइजेस किसके लिए हैं। आप गिन के देखें हमारी जिंदगी का 101% जो हिस्सा है ना, वो इस मट्टी के बुत की खिदमत में जाता है। और वो अंदर जो सिसकती तड़पती हुई रूह है ना, वो चीखे मारती है और हमें पता नहीं चलता। तो अभी तक जितनी बात की, इसका खुलासा क्या है कि इंसान को इस बात की फिक्र लगनी चाहिए कि मेरी मौत अल्लाह के कामों को करते हुए आए, इताअत के कामों पे मरे, खत्म बिल खैरों,